नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले ने सब करो योगेश, क्योंकि जिंदगी जरूरी है। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर और जिस तरीके से ग्रीष्मकाल में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, पानी जीवन जीने के लिए कितना आवश्यक है यह किसी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं से दूर जल संरक्षण के लिए अभी जल कितना आवश्यक है यह अत्यंत ही प्रत्येक इंसान को पता है, पर क्या हम जल संरक्षण के लिए कितने तैयार हैं? और जल संरक्षण को लेकर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में गोपाल जी कोठे जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, मोबाइल में स्वागत है आपका।
नमस्कार सभी श्रोताओं को, मोबाइल वाणी सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
सर, जल बचाने हेतु जल संरक्षण के लिए कितने तैयार हैं हम और क्या संदेश देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए?
देखिए, अभी बहुत जल संरक्षण के लिए बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है और साथ में जल संरक्षण को बचाने के लिए काफी सारे लोग प्रयासरत है। अभी गर्मी का मौसम जो चल रहा है, बहुत ही ज्यादा जलस्तर भी कम होते जा रहा है, तो जल संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय हम घर से लेकर तो बाहर तक जहाँ पे भी हो सकता है हमें जल बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और बहुत से अपने अपने तरीकों से उसका उपयोग करके जल को बचाना चाहिए।
धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए जल आवश्यक है और जल की आवश्यकता किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है सर, लेकिन जल संरक्षण को लेकर जब बात आती है तो जल संरक्षण के लिए बहुत सी विकट परिस्थिति आ जाती है। शायद अवैध उत्खनन हो या फिर वृक्षारोपण में कमी आ रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और इसमें और क्या प्रयास करने चाहिए एक आम आदमी, इसको लेकर शायद प्रशासन भी इस जल संरक्षण में और कितनी अहम भूमिका निभा सकता है?
बहुत सही बात बोली आपने कि अभी जल को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाना, जितने ज्यादा वृक्ष हम लोग लगाएंगे उससे जल संरक्षण के लिए और होने वाली बरसात के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ में अभी हमारे यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा है, हमारे यहाँ जंगल साफ होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहे हैं, नदियों की लूटमार मची हुई है। इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और जितना नदी को छलनी करते जा रहे ये लोग रीति का उपयोग करते हुए, और उससे जलस्तर बहुत नीचे जाते जा रहा है। हम देखते थे पहले 10 साल 15 साल पहले कि हमारे नदियों में निरंतर पानी बहते रहता था, आज वो स्थिति नहीं है। कारण कि ना हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे, जल को छलनी कर रहे बोले तो हमारे नदियों को छलनी करते जा रहे हैं। हमारे क्षेत्रों में भी हम बात करेंगे तो जैसे हमारी जीवनदायिनी कन्हान नदी, जाम नदी, इन दोनों नदियों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग कि जिससे जलस्तर कम होते जा रहा है। साथ में पेड़ पौधों की कटाई, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगवाने चाहिए। उसके संरक्षण के लिए उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार भी इसके ऊपर वृक्षारोपण के लिए ध्यान दे रही है, लेकिन कटाई जितना कम वृक्षारोपण होते जा रहे हैं उससे ज्यादा कटाई होती जा रही है। यह बहुत हमारे लिए नुकसानदायक है और हमने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन हमें कितना महत्वपूर्ण होता है, तो जितना और उस समय पेड़ों का महत्व को समझा गया कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और ऑक्सीजन शुद्ध रूप से ऑक्सीजन पेड़ों से जो मिलती है, इसी प्रकार हमारा जो स्रोत होते हैं जल के स्रोत होते हैं, कुएं है, बावलिया है, नदी है, झरने हैं, इसका भी हमें बहुत उपयोगी तरीके से संरक्षण करना चाहिए।
सर, क्या जिस तरह से आपके क्षेत्र में कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है अभी भी वर्तमान समय में, ऐसे कुछ है?
बिल्कुल, हमारे क्षेत्र ऐसे है, हमारे क्षेत्र में भी पानी की बहुत समस्या है। हम हमारे नगर के ही देखे तो पहले दोनों टाइम जो पानी के क्षेत्र में समस्या होने के कारण पहले दोनों समय नल आता था हमारे नगर पालिका द्वारा, लेकिन जल की कमी, जल का उपयोग अधिक होने के कारण नगर निगम भी, हमारे यहाँ नगर पालिका भी एक टाइम ही एक दिन छोड़ के नल दे रहा है, पानी जल दे रहा है। इसका मतलब यही से समझ में आता है कि अभी जो जल की स्थिति है बहुत गंभीर है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बहुत कमी आए। वैसे ही हमारे छोटे छोटे गांव में हम लोग देखते हैं, हमारे क्षेत्रों में तो जहाँ बोरवेल लगे हुए हैं, वो हेडपंप लगे हुए, वो भी सूखते जा रहे हैं, और आजू बाजू क्षेत्र में जो नदियां झरने बहते हैं, नदियां बहती है, वो भी सूखते जा रही है। इसलिए जल के कुएं कुएं का भी जलस्तर कम होते जा रहा है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ग्राम है, बहुत सारी नगर पालिकाएं हैं, जिसमें हम लोग जल की पूर्ति अभी तक पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे।
सर, इस तरह से और एक बार देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से नलों की टूटियां लोगों की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसको एक नया आमंत्रण दे रहा है, जल जल की जो लापरवाही हो रही है, नलों में टूटियां नहीं लगना और कई बच्चे पानी खेलते रहते हैं, तो ये आने वाले दिनों के लिए और एक विकट परिस्थिति आ सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए एक आम इंसान ने, प्रशासन ने तो
बिल्कुल
छोड़िए।
बिल्कुल, ये तो हमें हमारे घर से ही शुरू करना होगा कि हम लोग भी, हमारे घर पे मेहमान आते हैं, हमारे घर में भी नल कुछ कुछ बूंद बूंद पानी टपकते रहता है, इससे भी जल की जो जल का नुकसान ही होता जा रहा है। हम लोग भी, हमारे घर में मेहमान आते, एक गिलास पानी, हम लोग 5-6 मेहमान आते हैं उदाहरण के लिए, और एक एक गिलास पानी हम लोग उनको देते हैं, और वो एक घूंट पीने के अलावा और वो पानी फेंका जाता है। तो ऐसे में जितना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे घर से शुरू करें, और जितने भी नगर पालिकाएं, नगर बाहर सार्वजनिक नल है, जो अनयूजेस पानी बहते जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित रूप से उसको रिपेयर करें, टोटी लगवाए, और जितने जल्दी रोको टोको का अभियान, जैसे हम लोगों ने मास्क के लिए चलाया था, उसी प्रकार जो पानी का अनुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर भी लोगों ने एक दूसरे को टोकना चाहिए कि पानी का बिल्कुल जहाँ उपयोग हो उसी जगह हम लोग उपयोग करें, जहाँ जरूरी हो उसी जगह पानी का उपयोग और सीमित मात्रा में करें, और उसका संरक्षण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
सर, क्या आपके क्षेत्र में स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, या स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल सुविधाएं हो, क्या इसमें भी सर इस जल की कमियां देखी जा रही है, और क्या जल संरक्षण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मेडिकल जो फैसिलिटी है वहां पर मरीजों को उपलब्ध पानी जल उपलब्ध हो पा रहा है समय पर?
जल तो अभी हम लोग देखते हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी ऑफिस है वहाँ पे भी जल की पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है लगभग। फिर भी सरकार और जो अधिकारी लोग है इसके लिए बिल्कुल व्यवस्था करके रखी है। हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी, हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना बहुत सारी चीजों की कमियां होती है, इसको दूर करना हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे लिए बहुत सारे ऐसे स्कूल है, अन्य विभाग के जहाँ पे जल के स्रोत बने हुए हैं वहाँ पे भी नल है, वो हम लोग हमारे SDM ऑफिस में भी जाएंगे तो वहाँ आए दिन पानी टपकते रहता है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन उस पर ना किसी अधिकारी का ध्यान जाता है, ना ही किसी कर्मचारी का ध्यान जाता कि वहां पे 20 रुपए की टोटी लाकर लगवा दे।
सर, क्या
और हम पानी बचाने के लिए, हमारे जो घरों में जो अभी नगर निगम पानी दे रहा है उसको बचाने के लिए मीटर भी लगवा दे तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि जितना पानी हम लोग यूज करेंगे उतना ही जो नगर निगम के द्वारा, जो भी हमारे नगर पालिका के द्वारा जो पानी दिया जा रहा है उसमें मीटर भी लगे होंगे, और उनको समझ में आएगा कि जितना मीटर का बिल आएगा तो उतना हमको जितना ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसी सुविधाएं भी करनी चाहिए नगर पालिका द्वारा।
सर, क्या सर जल संरक्षण को लेकर अवैध उत्खनन हो या कई खदानों में गहरीकरण हो, इससे जल भूगर्भीय जलस्तर निरंतर कम हो रहा है, सर कितना महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों में जिस तरीके से जो उत्खनन हो रहा है, जल भूगर्भीय जल में निरंतर कमी आ रही, कितना इसमें योगदान देखते हैं जो कि ये उत्खनन हो रहा है?
तो इसमें बहुत बढ़िया चीज बोली कि योगदान किसका देखा जाए, जो नदियों को छलनी करते जा रहे हैं, जिसका बालू निकालते जा रहे हैं, और हमारी नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाता जा रहा है। हमारे कन्हान माता के नदी में अपने छाती पे बुलडोजर चला के उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बेकार स्थिति है, और हम लोगों को इसका प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम भी हम लोग बहुत जगह देख चुके हैं कि इसका परिणाम विपरीत परिणाम मिलता है, तो इसके ऊपर सब चीजों ने और ध्यान देना चाहिए कि जो जल के स्रोत होते हैं, चाहे वो हमारे घर से लेकर तो नदी नाले तक, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि, और आपने जो बात बोली कि जो नदी को छलनी करने वाली बात, इसके ऊपर सबके सामने है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पर प्रयास होगा तो हमारी जीवनदायिनी कनाल, जाम, ऐसे नदियां, हमारे बीच से वाघे नाला बहता है। एक समय में हम लोग हमारे सौसर के आधा सौसर उसमें नहाता था, तैरता था। आज ऐसी स्थिति है कि वहां गंदे पानियों का ढेर लगा हुआ है और उसका भी जलस्तर कम हो गया है। आज उस विषय में थोड़ा सा एक अधिकारी से मेरी चर्चा हुई थी कि हम लोग एक सौसर के पानी को कैसा उपयोग किया जाए, जो घर से नालियों के पानी निकलता है, जो सीवेज का पानी निकलता है, उसका उपयोग भी हम लोग कैसे करें, इस पर हम लोगों की भी चर्चा हुई, एक अधिकारी से चर्चा हुई है कि कैसे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग करके इस पानी को भी उपयोग ला सकते हैं। इसके ऊपर अगर सब लोगों का साथ, ऐसे प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग बिल्कुल हमारे सौसर को, हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि हर घर से निकलने वाला जो पानी होगा, हर घर से निकलने वाला सीवेज पानी होगा, उसका भी उपयोग हम लोग हमारे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और हमारे जीवन उपयोग के लिए उस पानी का हम लोग उपयोग करें जो गंदे नाले में अभी बहते जा रहा है।
जी सर, किसान भाई जिस तरीके से अपने खेतों में फसलें उगाते हैं, क्या सर इसके लिए कुछ वैज्ञानिक तरीकों से खेती में जो फसलें उगाते हैं उसको लेकर जल संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे कम से कम पानी में फसल भी उत्पन्न हो सके और जल संरक्षण में किसान भाई भी योगदान कर सके, इसके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप?
बिल्कुल सही बात बोली कि किसानों का जो तरीका होता है, अभी हमारे पिछले परंपरा हम लोग देखते आ रहे हैं कि परंपरा अनुसार हम लोग पटपानी, मराठी में उसको हम लोग पटपानी बोलते हैं, पटपानी देते हैं, लेकिन अब इससे बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे हम लोग पानी का बहुत सारा बचाव कर सकते हैं। जैसे हम लोग ड्रिप सिस्टम लगवाए, लेकिन ये हर किसानों के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा ये पहले नलकूप योजना आई थी, बहुत सारे पाइप देते थे, बहुत सारे ड्रिप देते थे, अभी ये सरकार ने भी ये योजनाएं बंद कर दी है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार ने कि किसानों को कम पानी खर्च और अच्छे अच्छे अच्छा फसल वो उत्पादन कर सके, लेकिन परंपरा अनुसार हम लोग जो करते जा रहे हैं उसमें पानी का बहुत सारा नुकसान होता है। जहाँ पानी नहीं, जिन फसलों को पानी मिलना चाहिए उन फसलों को पानी नहीं मिलता, साथ में नदियों का जलस्तर भी कम होते जा रहा है, तो इनके कुएं भी सूखते जा रहे हैं, किसानों के कुएं सूखते जा रहे हैं, उनके बोरवेल सूखते जा रहे हैं, तो ये इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो पिछले मुझे ध्यान में आता है कि पिछले 4-5 साल पहले बहुत सारे ड्रिप के लिए प्रोत्साहित करती थी सरकार किसानों के लिए, अभी वो सिस्टम भी बंद हो चुका है और किसान, और ये भी इंस्ट्रूमेंट जो आ रहे हैं बहुत महंगे आ रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे गरीब किसान, 90% किसान हमारे बहुत सारे गरीब होते हैं जिनके पास उपलब्ध संसाधन उपलब्ध नहीं होते, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर उनको संसाधन उपलब्ध करवाए जल स्रोत को बढ़ाने के लिए, जिससे किसान उसका उपयोग करे। और यही संदेश देना चाहूंगा कि किसान भाई भी जो अभी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स जो आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, ड्रिप है, फिल्टर है, वेचुरी फिल्टर लगाते हैं, तो इससे भी हम लोग पानी को बचा सकते हैं।
सर, क्या किसान भाइयों के लिए फसलें उगाए साथ में ही वैज्ञानिक तरीकों से जो भी फसलें उगाते हैं उसमें सर सरकार द्वारा जो एक इक्विपमेंट या किसानों को जानकारी है तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाने जाए जानी चाहिए, साथ ही जो भी जो इक्विपमेंट है उसको एक बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचे, क्या क्या सब्सिडी कुछ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि किसान भी जल संरक्षण में सहभागी हो सके?
बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का भी बहुत बहुत ही बड़ा योगदान होता है जल संरक्षण के लिए, लेकिन आज की डेट में जो किसान सरकार जो योजनाएं लाई है, जो योजनाएं सरकार किसानों तक तो पहुंच नहीं पा रही है जल संरक्षण के लिए, जिसमें मेन चीज तो ड्रिप का, ड्रिप जो जल का स्रोत होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, उसमें भी किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और ना ही कोई सब्सिडी उनको दी जा रही है। ये ऐसा 3-4 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि किसानों को ऐसे मामले में कोई सुविधाएं नहीं है, और जो योजनाएं आती है वो कुछ बड़े किसानों तक ही वो योजना पहुंचती है, और 100 में से 10 किसानों तक वो योजना पहुंचती है, और वही 10 किसान इसका लाभ लेते हैं, बाकी 90% किसान इससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, और किसानों तक, हर घर, हर किसान तक इस योजना, ये योजनाएं हमारी चल रही है, उसका उपयोग आपने करना चाहिए। जो जल संरक्षण के लिए जो योजनाएं होती है किसानों तक, किसानों के लिए वो पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए, किसानों को भी इसको पूछते रहना चाहिए, और सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने हर किसान तक ये योजना पहुंचानी चाहिए, और उसका जल संरक्षण बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए जल संरक्षण का उपयोग।
क्योंकि जिंदगी जरूरी है, जल संरक्षण किस तरह हो, इन विषयों पर गोपाल जी ने मोबाइल वाणी के साथ जानकारी साझा की। गोपाल जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, और मोबाइल वाणी की पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगी, धन्यवाद।